समता विलास में परिशिष्ट खंड में चैप्टर है समता जीवन विज्ञान, अर्थात समता स्थिति जिसको हम ईश्वर प्राप्ति कहते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए जीवन की किस प्रकार की समझ चाहिए और किस प्रकार की तैयारी चाहिए। उसी का सब हेडिंग है जीवन सफलता हो। आम व्यक्ति जो संसार में रहता है और हम लोग भी जिस सांसारिक जीवन को जानते हैं, उसमें जीवन की सफलता हमको मात्र इतनी ही नजर आती है। मैं जब विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करता हूं तो हर विद्यार्थी का एक ही गोल होता है कि किसी प्रकार मुझको ऐसी एजुकेशन मिल जाए जिससे अच्छे पैसे की कमाई करके मैं अपने जीवन को सफल करूं। जो पढ़ाई करके बिजनेस के द्वारा या सर्विस के द्वारा पैसा कमाने लगता है, फिर अगला उसका प्रयास होता है कि मैं अपना परिवार बसा, जिसको हम कहते हैं विवाह कर, और विवाह करके अगला प्रयास होता है अच्छी संतान पैदा कर लूं, या जो संतान पैदा हुई है उसको भी मैं वही ख्वाब दिखाने की कोशिश करता हूं जो ख्वाब कभी मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में देखा, अर्थात अपने जैसा ही या अपने से भी बेटर उसको बनाने की कोशिश। और इस प्रयास में हम सब जानते हैं कि बुढ़ापे की दहलीज पर हम पहुंच जाते हैं। तो वाणी कह रही है कि ये जो बुढ़ापा है ये चिंता युक्त जीवन है। बुढ़ापे का जो जीवन है उसको वाणी, उसको ऋषि जो है वो चिंता युक्त जीवन है, क्योंकि बुढ़ापे का मतलब ये है जो तूने संसार बसाया था अब उसके छूटने का वक्त आ गया, धीरे धीरे वही संसार तेरे हाथों से खिसकने लगे। जो तेरी प्रिय देह है जिसके कारण तूने संसार बसाया था, वो तेरी प्रिय देवी धीरे धीरे रोगग्रस्त होगी, या यूं कह लें कि वो सुख का साधन नहीं रहता। तो जीवन की सफलता कब होती है? जब जीवन का अंत सुखपूर्ण। लेकिन जो सांसारिक जीवन है इसका अंत दुखपूर्ण। इसलिए सारे ऋषि एक ही सुर से कहते हैं कि मनुष्य ने विफल जीवन व्यतीत किया, उसको यह होश ही नहीं आया क्या करना था और क्या कर बैठा। ये ऐसी भयंकर भूल है जो कभी भी आपको समझ में नहीं आएगी यदि आप संसारियों के बीच में ही रहे और उन्हीं की नकल करके सांसारिक व्यवहार करते हैं। ये भूल आपको कभी समझ में ही नहीं आएगी और एक विफल जीवन लेकर आप संसार से विदा हो जाए। तो गुरु का संग इसीलिए किया जाता है, गुरु के वचनों का संग जिसको हम सत्संग कहते हैं इसीलिए किया जाता है कि इस भयंकर भूल का मुझको वक्त रहते एहसास हो जाए और मैं जीवन के सही मार्ग पर चलने में समर्थ हूं। तो गुरुदेव इस चक्र के द्वारा यही चीज समझाने की कोशिश है कि पहले वो विफलता क्या है इसको वो समझा रहे हैं पहले वचन में। इस संसार में हरेक देहधारी जीव इस संसार में हरेक देहधारी जीव अपनी जीवन सफलता प्राप्ति की खातिर दिन रात कोशिश करता रहता है, मगर तमाम शारीरिक अवस्था व्यतीत करके आखिर पश्चाताप ही लेकर जाता है। यानी सही सफलता जीवन को प्राप्त नहीं हो सकता है, यह ही माया का अधिक जाल है। हमारी कल्पनाएं बहुत तरह की हो सकती हैं, हमारी धारणाएं बहुत तरह की हो सकती हैं, लेकिन सत्पुरुष जो अज्ञान से 100% मुक्त है, यदि धारणा सही हो सकती है तो केवल उसकी हो सकती है। और संसार में कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसकी धारणा सही हो सकती है। वो मिश्र तो हो सकता है, सही भी या गलत कर, लेकिन सत्पुरुष की जो धारणा है, सत्पुरुष का जो निर्णय है वो केवल सही है। इसीलिए इस निर्णय के आधार पर मैंने अपने जीवन के बारे में सोचा। तो इस निर्णय को हम एक बार फिर सुन लें, ये निर्णय कहे क्या रहा है? इस संसार में हर एक देहधारी जीव अपनी जीवन सफलता प्राप्ति की खातिर दिन रात कोशिश करता रहता है, मगर तमाम शारीरिक अवस्था व्यतीत करके आखिर पश्चाताप ही लेकर जाता है। यानी सही सफलता जीवन को प्राप्त नहीं हो सकता है, यह ही माया का अधिक जाल है। तो हम जो कर्म कर रहे हैं सांसारिक सुख प्राप्ति के लिए, नाम कमाने के लिए, अपने को लोगों को दिखाने के लिए, उसको होश ही नहीं है कि ये मैं माया जाल में फंसा। ये माया जाल ऐसे ही समझ लीजिए, यदि सरल शब्दों में समझना है, कोई आपको ख्वाब दिखाए उसको पता है आपकी जेब में पैसा है, आप 1 करोड़ के मालिक हो या 10 लाख के मालिक हो, कोई ठग आपको मिल जाए और वो कहे कि मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताता हूं कि आप 5 लाख रुपए मेरे पास जमा कर दो या जिस काम में मैं कह रहा हूं उस काम में लगा दो, तो आपको 50% इंटरेस्ट के बराबर इनकम होने लगेगी, या 30% इंटरेस्ट के बराबर इनकम होने लगेगी। वो आपको ऐसा फॉर्मूला पढ़ाता है और इस प्रकार से कन्विंस करता है कि आप उसके वश में आ जाते हैं, अर्थात आप उससे कन्विंस हो जाते हैं। जैसे कि आप अक्सर अखबारों में पढ़ते होंगे कि वो व्यक्ति ठगा, किसी घर का सोना गायब हो गया, किसी लाखों रुपए लेकर कोई भाग गया, हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग गया। इस पढ़े लिखे समाज में ऐसे ऐसे ठग बैठे हुए हैं कि यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए लेके वो आपके शहर से गायब हो जाते हैं और ठग जाते हैं। तो जिस प्रकार वो ठग हमको ठग लेता है, ठीक उसी प्रकार ये जो माया जाल है, अर्थात ये जो संसार है, या यूं कह लें संसार के लोग हैं, ये सब जुबान दिखाकर हमको ठग लेते हैं, इनकी नकल करते हैं और उसी माया जाल में फंस जाते हैं, जिस माया जाल में फंसकर उसकी दुर्दशा हो गई। जरा विचार करके तो देखो, जो ठग विद्या का एक्सपर्ट है, जो आपको ठगने आया है, क्या आप उसको अच्छा इंसान कहोगे कभी? क्या समाज में कोई भी उसको अच्छा इंसान कहेगा? उसके पास हजारों करोड़ रुपया है लेकिन समाज में कोई व्यक्ति उसको अच्छा इंसान नहीं कहेगा, ये बहुत बुरा आदमी है, इससे दूर रहे। तो ये जो माया है, इसको तो संत कह रहे हैं माया महाठगनी हम जाने। इस माया को महाठगनी कहा, अर्थात जो आंख से नजर आ रही है ये माया है। माया उसे कहते हैं जो दिखाई पड़ रही है वो वास्तव में है नहीं। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल सुन रहे थे कि जो रस्सी है वो वो अंधेरे में सर्प के रूप में दिखाई पड़ती है, लेकिन ज्ञान क्या कहता है, प्रकाश क्या कहता है कि ये वास्तव में सर्प है नहीं, ये रस्सी है। तो ये संसार का सुख है, संसार की सफलता है, ये वास्तव में ये मेरे जीवन की विफलता है। ये कौन बताएगा आपको, ठग बताएगा क्या आपको? तो संसार के लोग आपको कभी नहीं बता सकते ये जीवन की विफलता है। वो तो आपकी तारीफ करेंगे, वाह तुमने क्या तीर मारा, कितना विकास किया, और तू भ्रम में आ जाएगा, हाँ मैंने विकास किया। जब गुरु के नजदीक जाएगा, सही सत्संग को समझने वाला जब बनेगा, तब तुझको समझ में आएगी कि मैंने जीवन का कीमती वक्त तो बर्बाद कर दिया। इसीलिए जिसने भी लेट कर दिया, जीवन के बुढ़ापे में प्रवेश कर लिया, अब उसको होश ही नहीं आया, वो तो फिर विफल जीवन, उसके अंदर तो निराशा आएगी आएगी। जिस दिन भी होश आएगा उसके अंदर पश्चाताप गहरा जरूर। इसीलिए सब कुछ की बात को समझना चाहिए, उनकी बात सरल नहीं होती, पढ़ने में सरल हो सकती है लेकिन समझने में सरल नहीं। यही एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं इसी वचन में, वो कह रहे हैं कि इस संसार में हरेक देहधारी जीव अपनी जीवन सफलता प्राप्ति की खातिर दिन रात कोशिश करता रहता है। हरेक देहधारी जीव अपनी सफलता प्राप्ति के लिए कोशिश करता है। मेरे लिए वो कह रहे हैं देहधारी जीव, जैसे कोई व्यक्ति सूट पहने जा रहा हो तो आप उसको क्या कह सकते हो, ये सूटधारी मनुष्य। उस मनुष्य की क्या पहचान है कि वो सूट धारण किए हुए है, इसलिए उसके साथ एडजेक्टिव लगा दिया गया, ये सूटधारी मनुष्य। तो महाराज जी वैसा ही शब्द प्रयोग कर रहे हैं समझाने के लिए कि देहधारी जीव। तो मनुष्य में सूट में आप डिफरेंस कर रहे हैं, आप तो भ्रम नहीं थे, लेकिन अपने बारे में आप भ्रमित हो। मैं हूं जीव, देह मैंने उसी प्रकार धारण कर रखी है जिस प्रकार मनुष्य ने सूट धारण कर रखा है, क्योंकि मैंने दोनों को एक कर दिया, मैं सूट बन गया मनुष्य भाव से अलग हो, तो मैं देह बन गया जीव भाव से अलग हो गया। इसलिए हर सोच हर कर्म मेरे ही पतन का कारण बनता है, आपकी हर सोच और हर कर्म आपके ही पतन का कारण बनता है, इसका होश मुझे आई नहीं, क्योंकि मैंने अपने आप को पहले ही कुछ का कुछ समझ लिया। इसलिए सारा ज्ञान सारा कर्म आपका अज्ञानता युक्त है, और अज्ञानता का कर्म आप जानते हैं कि वो पाप कर्म है, और पाप कर्म उसे कहते हैं जिस कर्म का जो अंतिम फल है वो दुख है। इसलिए महाजी कह रहे हैं कि मगर तमाम शारीरिक अवस्था व्यतीत करके आखिर पश्चाताप ही लेकर जाना है, वो पश्चाताप मेरे मन में होता है, उस पश्चाताप से मैं ग्रसित होता हूं। क्योंकि जब अंतिम वक्त आता है, जब भी वो घड़ी ऐसी आती है जब तेरे मन में निश्चय रहता है कि जीवन लीला मेरी समाप्त होगा, उस समय तुझको सारा पास्ट नजर आता है, सारे पास का फल नजर आता है, सारा पास का कर्म नजर आता है। उस समय व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल सत्य का दर्शन कर रहा होता है। उस समय उसको पता लगता है मैं किस व्यथा को लेकर जा रहा हूं, किस बेचैनी को लेकर जा रहा हूं, किस निराशा को लेकर जा रहा हूं। उसकी बेचैनी उसकी व्यथा उसकी निराशा ये सिद्ध करती है कि वो अपने कर्म के कारण आज ये सबकी हालत होती है, इससे कोई बच नहीं सकता। इसीलिए सतपुरुष कुछ दूसरी ही बात कहते हैं, क्या कहते हैं, जब तक सही खेद का बोध ना हो सके, जब तक सही खेद का बोध ना हो सके तब तक उस दुख से निवृत्ति होनी मुश्किल है। सो इस जीव को परम खेद केवल इंद्रियों के भोगों की अधिक आसक्ति ही है, ऐसा जानने से ही कल्याण और बंधन के विचार को दृढ़ करके हरेक जीव सत शांति जो परम सफलता है उसको प्राप्त हो सकता है। कहते हैं सत शांति जिसको आप परम आनंद भी कह सकते हैं। तो परम आनंद किसे कहते हैं? जिसमें दुख का निवास नहीं है। हमारे सुख को परम आनंद क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमारे सुख में दुख का निवास सदैव बना रहता है। हमारे सुख में दुख का निवास सदैव बना रहता है। और जिस सुख की, जिस आनंद की, जिस शांति की बात सत्पुरुष कर रहे हैं, वहां सुख प्रवेश, दुख प्रवेश कर ही नहीं सकते। इसलिए ऐसे सुख की प्राप्ति, ऐसे आनंद की प्राप्ति को जीवन की सफलता कहते हैं। और उस प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं उसको सत्पुरुषार्थ। जो संसारिक सुख प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं उसको जीवन की विफलता। ये पुरुषार्थ नहीं है, ये भ्रम है, गलत डायरेक्शन में आपका पुरुषार्थ। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं, इसका आधार क्या है? वो कह रहे हैं जब तक सही खेद का बोध ना हो सके तब तक उस दुख से निवृत्ति होनी मुश्किल है। So, इस जीव को परम खेद इंद्रियों के भोग की अधिक आसक्ति ही है। अर्थात कर्म इंद्रियों से कर्म करना, कर्म में आसक्त रहना और उस कर्म का जो फल है उसमें मैं सुख भोगने की कोशिश करता हूं, वो इंद्रियों के भोग। तो दोनों इसमें आ गए, पांच कर्म इंद्रिया भी आ गई, पांच ज्ञान इंद्रिया भी आ गई। पांच कर्म इंद्रिया, पांच ज्ञान इंद्रिया के कॉम्बिनेशन को ही शरीर। तो जो मेरा शारीरिक जीवन है ये परम खेद का कारण है जीव के लिए। और यदि आज तक मेरा निर्णय ही नहीं हो पाया, जो मैं संसार की नकल करके बचपन से जो जीवन जी रहा हूं, अर्थात विद्यार्थी जीवन के 25 साल बीत गए, उसके बाद 10-5 साल मेरे शादी के बाद के जीवन बीत गए, उसके बाद का जीवन गृहस्थी पालन में बीत गया, पैसा कमाने में बीत गया, लाइफ सेट करने में बीत गया, ये सारा का सारा जो जीवन है ये खेद रूप जीवन। कहते हैं इस चीज को जब तक मैं समझ नहीं पाऊं कि ये खेद रूप है, जब तक इसका बोध मेरे अंदर नहीं होता, इसका निर्णय नहीं होता, तब तक इस दुख से निवृत्ति प्राप्त करने की मैं कोशिश क्यों करूं? यही कारण है कि आप देखते होंगे कि बड़े बड़े सांसारिक रूप से समझदार लोग, बड़े बड़े सांसारिक रूप से सफल लोग इसी खेद में रहते हुए अपना जीवन पास करते हैं और हम उनकी नकल करते हैं। गुरु हमको आगाह कर रहा है कि ये माया भ्रम है, अर्थात ये बाहर की दृष्टि है या यूं कहिए सांसारिक दृष्टि है। यदि तू इसको सही दृष्टि से देखे, सही दृष्टि कौन सी? जो गुरु इसको देगा। यदि तू इस सत्संग दृष्टि से देखेगा, सदविचार दृष्टि से देखेगा, तब तेरा निर्णय तो दूसरा ही होगा। जैसे कि यदि सांसारिक दृष्टि से देखता हूं तो मैं शरीर, मेरा नाम है, मेरा रूप है, मेरा कर्म, इसके आधार पर लोग मुझे पहचानते हैं। लेकिन मैं अध्यात्म से दृष्टि से देखूंगा तो मुझको पता लगेगा कि मैं जीव हूं, जिस जीव ने अर्थात मैंने ये शरीर धारण कर रखा, मैंने ये शरीर धारण कर रखा, मैं बंधन में हूं, देह बंधन में नहीं। महाजी तो बड़ा स्पष्ट लिख रहे हैं संजयदास, इस देह की गति क्या है? गति का मतलब है वहां पर परम गति। इस देह की परम गति क्या है? इसको अग्नि के सुपुर्द कर दिया। तो जो देह का मूल स्वरूप है पांच तत्व, तो उसी रूप में विलीन हो जाती, अर्थात अपने मूल रूप में आ जाती है। और मेरा मूल रूप क्या है? इसको आत्मा कहते हैं, इसको ईश्वर कहते हैं। तो देह की गति होने के पश्चात भी मेरी दुर्गति होती है, मैं अपने मूल रूप में नहीं आ पाता, मैं अपने आत्मरूप में नहीं आ पाता। तो मैं जीव रूप में विदा होता हूं और वासना युक्त होना, कि जो मेरा मन है जिसको मैं जानता हूं जन्म में, वो मन का जो दूसरा नाम है उस मन का, उसी का नाम वासना है। तो ये वासना मेरे संग ही जाती है और उस वासना के अनुसार ही मुझको नई देह प्राप्त होती है। जिस प्रकार इस देह से जब आप सो जाते हो तो मन के अनुसार या वासना के अनुसार आपको स्वप्न की प्राप्ति हो जाती है। जिसको पता है मेरी वासना है, मेरा मन है, ये स्वप्न का निर्माण मेरे ही मन के द्वारा हुआ है, मेरी वासना के द्वारा हुआ है, होता या नहीं होता। जिस प्रकार इस जागृत हालत में जब मैं सो जाता हूं तो स्वप्न की हालत में मुझको स्वप्न का दर्शन होता है, वो मेरा नया संसार है। उसी प्रकार ये देह जब परमानेंट मर जाती है तो उस समय मेरे ही मन की रचना के अनुसार नई देह नया संसार मेरे लिए तैयार होता है। इसीलिए महा जी की वाणी कह रही है कि सब जड़ मन का है, ये मेरा संकल्प है। लेकिन संसारिक रूप में ये बात आपकी कभी समझ में नहीं आई, समझ नहीं सकते। संसार का कोई भी वैज्ञानिक जो भी धरती पर आज तक हुआ है इस विज्ञान को नहीं समझ सकता, जब तक कि उसका गुरु पर विश्वास ना आए, या यूं कह लें कि शास्त्र पर विश्वास ना आए कि परफेक्ट साइंस शास्त्र में उपलब्ध है, परफेक्ट साइंस गुरु के पास उपलब्ध है। जब तक ये विश्वास नहीं आए आप उसके पास सीखने की कोशिश नहीं करोगे। तो इसीलिए गुरुदेव जब ये निर्णय दे रहे हैं कि जब तक सही खेल का बोध ना हो सके, अर्थात ये मेरा जो सांसारिक जीवन है इसका जो परिणाम है वो दुख रूप है, जब तक ये विश्वास आपके अंदर पैदा नहीं होता सत्संग श्रवण करके, तब तक उस दुख से निवृत्ति होनी मुश्किल है। जब जीवन को दुख रूप आप मान ही नहीं रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो, तो उस दुख से मुक्त होने की कोशिश आप गंभीर कोशिश क्यों करो। इसलिए ना हमारे सिमरन में गंभीरता है, ना हमारे सत्संग में गंभीरता है, ना हमारे अध्ययन में गंभीरता है। इसीलिए सत्संग के प्रति हमारी इंपॉर्टेंस देख लीजिए, घर के कामों को प्राइम इंपॉर्टेंस, आश्रम में लेट पहुंचा कोई फर्क नहीं। कहते सत्संग में सुन ही लेगा, मैं ये नहीं सोचता कि प्रभु ने एक मौका दिया था मुझे, मान लिया डेढ़ घंटे यहां सत्संग का वक्त बिताया, तो डेढ़ घंटे ईश्वर के पास रहने का तुझको मौका मिला, या यूं कहना कि ये डेढ़ घंटे गुरु घर में बैठने का मुझको मौका मिला, ईश्वर के दरबार में बैठने का मुझको मौका मिला था, वो समय काट दिया मैं। और मेरी जो सांसारिक थिंकिंग है उसके हिसाब से मैं अपने आप को कन्विंस कर लिया कि मैं जो अच्छा विचार था वो तो सुन ही लेता, तो क्यों ना मैं आधा पौन घंटा घर के काम में लगा दू। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, मेरी चालाकी है, क्योंकि मैं सांसारिक हूं, मैं इसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से नहीं करता कि प्रभु ने मुझको एक मौका दिया है हफ्ते में डेढ़ घंटे प्रभु के पास उसके दरबार में ऐसे स्थान पर जहां बैठकर उसकी याद आती है वहां बैठने का मौका मिल गया, मैं क्यों ना जाकर डेढ़ घंटा वहां जाकर बैठ, मैं वहां भी समय की चोरी कर लेता हूं। चोरी किस रूप में, कि जिस चीज से मेरा पतन हो रहा है उसी में उस कीमती टाइम को मैं इन्वेस्ट कर रहा, उसमें से भी 15 मिनट आधा घंटा और घंटा चुरा के मैं संसार में लगा, ये मेरी सोच है, ये मेरी डिफेक्टिव सोच है, और इस डिफेक्टिव सोच से मैं अपने आप को कन्विंस कर लेता, सेटिस्फाई कर लेता हूं मैं ठीक है। तो साधारण सा जो कर्म है उसमें भी खोट है, तो कौन आपको इस संसार की गलत से छुड़ाए, जब आप इससे निकलने को तैयार हैं, आप एक वहम पाले बैठे हो कि जो अच्छा असली विचार होता है वो मैं सुन लेता, ये आपका वहम है वहम। इस मार्ग पर चलने के लिए सेक्रीफाइस चाहिए, तो आपको ईश्वर ने एक मौका दिया था कि हफ्ते में डेढ़ घंटा तू ईश्वर के लिए टाइम का सेक्रीफाइस कर सकता था, तूने बचा लिया, तूने अपने आप को सेक्रीफाइस से त्याग से मुक्त कर दिया, तेरा विकास कैसे हो। तो खोट मेरी सोच है और अपने आप को उस खोटे विचार से मैं संतुष्ट हूं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब तक मेरे अंदर ये विचार पक्का नहीं होता कि ये जो संसारी जीवन है ये वास्तव में दुख रूप इसका जो परिणाम है वो पश्चाताप पैदा करने वाला है, उसको पश्चाताप में जलना ही पड़ेगा, कोई दुनिया की ताकत उसको बचा नहीं सकती। चाहे आज मैं संसारिक रूप से कितना ही विकसित आदमी अपने आप को क्यों ना, लेकिन इस पश्चाताप की अग्नि में मुझको जलना ही पड़ेगा, दुनिया की कोई ताकत मुझको उससे छुड़ा नहीं सकती। जिस दिन आपकी बुद्धि में विवेक आएगा, ये शास्त्र आप जैसा वो कह रहे हैं जैसा लिख रहे हैं वैसा ही समझोगे, तब आप इस गलती को एक्सेप्ट करोगे। इसलिए फिर बहाने नहीं बनाओगे, क्या करूं संसार में बड़े काम है, बड़ा विकास करना है, मैं कहां से एकांतवास में समय निकालू, कहां मैं तपोभूमि जा सकता हूं, कहां मैं कैंप में जा सकता हूं, कहां मैं वक्त पर सत्संग में आ सकता हूं, मेरे तो बड़े काम। गुरु कह रहा है इस काम को करने के लिए तू आया है उसकी तो तू समझ में नहीं आई, तू चलेगा। इसीलिए सत्संग के प्रति गंभीर अपने जीवन के प्रति गंभीर हो, और ये गंभीर कब बनेंगे आप, जब गुरु के प्रति गंभीर हो, और गुरु के प्रति गंभीर कब हो गए, जब उसकी बात को जैसा वो लिख रहा है वैसी ही समझने की कोशिश करोगे, अपने मन चाहे संकल्प उस पर नहीं छोड़ोगे कि महाजी ने लिख तो दिया है लेकिन ऐसा होता थोड़ा ना, ऐसा कोई कर थोड़ा ना सकता। गुरु कभी टेम्परेरी बात नहीं लिखता, वो केवल सत्य लिखता है। तो जितनी जल्दी गुरु की बात समझकर समाज पर चल पड़े उतनी जल्दी ही जीवन में सफलता को प्राप्त होगी और निराशा से बस वो मिल सकती है।